नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आज हम बात करेंगे कुछ जो हम परिवर्तन देख रहे हैं। आपको ध्यान है कि हम लगातार आलोचना करते रहे हैं आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर मोदी सरकार की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारी आलोचना का कुछ प्रभाव हुआ है और हम उसको देख रहे हैं अमित शाह जी के मुक्ति के रूप में। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि अमित शाह का भी अब मुक्ति दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी संभवतः जो उनके चारों तरफ बेड़ियां और चारों तरफ से जो पाबंदियां थी उनमें कुछ ढील हो गई लगती है। और उसके मेरे पास तीन उदाहरण हैं, वो तीनों उदाहरण आपसे मैं उसकी चर्चा करूंगा। और पहला जो है वो हम देख रहे हैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में सबसे आगे किसको किया गया, अमित शाह जी को किया गया। वैसे भी हम जानते हैं कि अमित शाह देश के गृह मंत्री तो हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता का उत्कर्ष धारा 370 को हटाने के बाद और उसके बाद फिर CAA लगाने के बाद और फिर लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने दहाड़ा था कि NRC को आने से कोई रोक नहीं सकता। उसके तीन दिन बाद रामलीला मैदान में अमित शाह जी की हवा फुस कर दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उन्होंने कहा कि हमारा NRC लाने का कोई प्लान नहीं है। और उसके तत्काल बाद शाहीन बाग में उनके हाथ बंधे हुए थे, सबको दिख रहे थे। और शाहीन बाग के बाद दिल्ली दंगों में आपने देखा कि आगे उतार दिया गया हमारे देसी जेम्स बॉन्ड को। उसके बाद फिर आपने देखा कि बाद में जब कोविड हुआ, मौलाना साद का मामला हुआ, तो उसमें भी देसी जेम्स बॉन्ड आ गए। धारा 370 हटाने के बाद अमित शाह जी जम्मू कश्मीर नहीं गए और उनके स्थान पर जब वहाँ पर मामले काफ़ी कंट्रोल में थे, नियंत्रण में थे, तब भी वहाँ पर भेजा गया देसी जेम्स बॉन्ड को। और लगातार जो कि मेरी सूचना भी रही है और लगातार दिल्ली के हलकों में यह चर्चा चलती रही है कि भाई होम मिनिस्ट्री तो देसी जेम्स बॉन्ड चला रहा है और अमित शाह जी को तो सिर्फ गाली खाने का काम दिया गया है, जैसे कि पिछली सरकार में यह गाली खाने का काम दिया गया था राजनाथ सिंह जी को, उस प्रकार इस सरकार में गाली खाने का काम अमित शाह जी का है। और जो लोग अमित शाह जी को जानते हैं, हम भी जानते हैं, काफी निकटता से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि यह उनकी प्रकृति है नहीं इस प्रकार की, इस प्रकार से दब के काम करने की प्रकृति अमित शाह जी की है नहीं। तो फिर क्या है, क्यों नहीं हो रहा है? लगभग 2-2.5 साल से हम लगातार इस प्रकार का ये देख रहे हैं। हमने पश्चिम बंगाल में देखा, हमने उसकी भरकर आलोचना की, हमने उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में लगातार पीछे हटते देखा, हमने उसकी भरकर आलोचना की, हमने दिल्ली दंगों में देखा क्या हुआ और उसके अन्य कई उदाहरण हैं जो हम लगातार उसकी हम बात करते रहे हैं। लेकिन 2-3 जो उदाहरण आए हैं उसको देखकर हमें लग रहा है कि संभवतः फ्री हैंड दे दिया गया है। और वह आरंभ तो हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था VK सक्सेना जी को, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरी अंदर की सूचना है क्योंकि VK सक्सेना जी से मेरे निकट संबंध रहे हैं, कि वे आउट एंड आउट अमित शाह जी के व्यक्ति हैं, मोदी जी के भी हैं, लेकिन अमित शाह के भी उतने ही निकट हैं जितने वो मोदी जी के हैं। तो जब VK सक्सेना जी आए तो हमें लगा कि भाई इसमें लगता है कि ये निश्चित रूप से मोदी जी की और अमित शाह की सहमति से ही हुआ होगा। फिर VK सक्सेना के दिल्ली में आने के बाद में एक के बाद एक लगातार जो एक्शन आरंभ हुए केजरीवाल की इस सिटी स्टेट के विरुद्ध, उससे भी हमें काफ़ी आशाएं बंधी। और चूंकि उनके जो भी कार्य हो रहे थे, जो भी क्रिया उनकी तरफ से हो रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली VK सक्सेना की ओर से, उस सब में होम मिनिस्ट्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट था। बिना होम मिनिस्ट्री के सिग्नल के, बिना होम मिनिस्ट्री के कोऑपरेशन के वो काम नहीं हो सकते थे। चाहे वो सीबीआई को लगातार सीबीआई को केस दिया गया, एक केस दिया गया, एक्साइज वाला दिया गया, एजुकेशन वाला दिया गया, बसेस वाला दिया गया, तो ये सब सीबीआई को दिए गए। ईडी आ गई उसमें, ईडी वैसे तो आप जानते हैं कि ईडी जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करती है, लेकिन उसका भी एमएचए से यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बड़ा ही क्लोज कोलैबोरेशन होता है। तो जो उसका अधिकारी है वो भी अब एक पुलिस अधिकारी ही उसका अध्यक्ष रहा है इस समय, इनकम टैक्स का अधिकारी उसका जो है वो अध्यक्ष है, डायरेक्टर है, निदेशक है, तो वो भी बड़े ही क्लोज कोलैबोरेशन में काम करती है। तो इससे ये पहला संकेत हमें मिला था कि संभवतः अमित शाह जी की ग्रिप जो है वो रिस्टोर कर दी गई है, उनको संभवतः फ्री हैंड दे दिया गया है। दूसरा जो हमें उदाहरण उसी से सामने साफ साफ दिख रहा है वो अब दिखा, कल जो अमानतुल्लाह का गिरफ्तार होना था वो बड़ी घटना है। अमानतुल्लाह गिरफ्तार होना बड़ी घटना इसलिए है कि अमानतुल्लाह को शाहीन बाग के समय, वो हीरो ऑफ शाहीन बाग जो था वो अमानतुल्लाह था। केजरीवाल पीछे था सबको पता है, और लोग सारे लेफ्ट लिबरल गैंग पीछे था सबको पता है, लेकिन जो ग्राउंड पर उसको एग्जीक्यूट कर रहा था उसका नाम था अमानतुल्लाह खान। और अमानतुल्लाह खान को यदि उस समय अरेस्ट कर लिया जाता तो ना तो शाहीन बाग में कोई दम रहता और ना ही दिल्ली के दंगे होते, लेकिन अमित शाह जी ने उस समय नहीं किया, या जैसी मेरी सूचना है उनको नहीं करने दिया गया। और अलग अलग तरह के फॉर्मूले ट्राई किए गए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में घुसेड़ना इत्यादि इत्यादि। आप ये बताइए, इतनी हास्यास्पद स्थिति थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है कि साहब इनको रोकिए, और सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये नहीं कह रही है कि आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, ये आपके क्षेत्राधिकार की बात है, आप स्वयं क्यों नहीं करते। एक कमेटी अपॉइंट कर देती है जिसमें वजाहत हबीबुल्लाह जैसा इस्लामिस्ट जो है वो अपॉइंट हो जाता है, लेफ्टिस्ट अपॉइंट हो जाते। तो ये स्पष्ट दिख रहा था कि भाई अमित शाह जी के हाथ तो बंधे हुए हैं, मुंह पर ताला लगा हुआ है, ना वो कुछ बोल रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे। दिल्ली दंगों में भी ये बात स्पष्ट दिखाई पड़ गई, पर जब वो दिल्ली दंगे हो गए, शाहीन बाग वाली स्थिति बाहर निकल गई, तो उसके बाद फिर अमित शाह जी को ये कहा गया कि भाई इनके इन्वेस्टिगेशन इत्यादि जो है वो ठीक से होने चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन इत्यादि हुए, लेकिन वहाँ भी दिल्ली पुलिस जो है वो उस समय भी दो तरफ से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी, और उसके कारण सेक्युलर मंकी बैलेंसिंग भी की उसने, वो सारे कार्य हुए। अब दिल्ली के ये जो एविडेंस है, अब इससे लग रहा है कि ये पूरी तरह से एक मामला एक निष्कर्ष की ओर जाता दिख रहा है दिल्ली में। और कम से कम जो ये न्यूसेंस वैल्यू, पूरे के पूरे बाहर के जो विदेशी फंडिंग गिरोह हैं, बाहर की जो टूल किट्स हैं, उनकी सहायता से जो कुछ भी दिल्ली में चल रहा था उसके ऊपर अंकुश लगता दिख रहा है। केजरीवाल परेशान है, तो केजरीवाल जब अपने स्वयं की बचाव की मुद्रा में आया हुआ है तो जो दूसरी शैतानियां जो वो करता रहता है उसके ऊपर भी अंकुश लगा हुआ है, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। तो फिर और क्या इसकी एविडेंस है, और जो एविडेंस है वो हैदराबाद वाला जो इस समय जो लिबरेशन डे वाला जो चल रहा है वो है, क्योंकि यहाँ वो ओएसी को सीधे सीधे चुनौती हो रही है। हमारे केसीआर साहब जो हैं उनको जो अलग अलग दिखा करते थे, उनका जो है वो वार्षिक बजट 1700 करोड़ से ऊपर का है माइनॉरिटीज़ का, ये अलग बात है कि हमारे बहुत सारे जो हिंदूवादी लोग हैं जो लगातार मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं कि उन्होंने 5000 करोड़ 5 साल में खर्च कर दिए इन लोगों के ऊपर, तो 5000 करोड़ का उन्होंने बजट लगा रखा है सालाना, सॉरी 5 साल में नहीं, 5000 करोड़ का, तो 1700 करोड़ का केवल 45 लाख मुसलमान है तेलंगाना में, और 45 लाख लोगों के लिए 1700 करोड़ का बजट है, और हमारे जितने भी हिंदूवादी मोदी सरकार को की आलोचना करते हैं, हम भी करते हैं। जो मोदी सरकार कर रही है वो गलत है, क्योंकि गुजरात में वो नहीं करते थे, यहाँ आके करने लगे। लेकिन इन लोगों को केसीआर क्यों नहीं दिखते? इन हिंदुत्ववादियों को केसीआर क्यों नहीं दिखते, जो 45 लाख मुसलमानों के लिए 1700 करोड़ खर्च कर रहा है? भारत सरकार के पास तो 17 करोड़ है, तो 17 करोड़ के लिए 5 करोड़ है और 45 लाख के लिए 1700 करोड़ है। तो अजीब सी बात है। तो ये जो हैदराबाद का जो संग्राम है पूरा का पूरा, आप सबको ज्ञात है, ये हमारे ओवैसी, हजरत ओवैसी ने फरमाया, जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे वो यहाँ रह गए। सबको पता है कि जो रजाकार था कासिम रिजवी, जब वो गया तो उसके साथ में कोई 5-7 लोग गए थे, और बाकी जो सारे रजाकार थे, जब एक्शन हुआ था सरदार पटेल का तथाकथित पुलिस एक्शन, जो आर्मी ऑपरेशन था जब वो हुआ था, तो 2400 रजाकार लड़ाई में मारे गए थे, 42 हमारे फौजी मारे गए थे, हमारे सैनिक मारे गए थे 42 उसमें, और 2400 से अधिक उसमें रजाकार मारे गए थे, 3300 से अधिक घायल हुए थे। और इन्होंने ऐसा आतंक मचा रखा था वहाँ पूरा, जो है वो रजाकारों का जब संगठन हुआ था तो उसका घोषित उद्देश्य था कि इसको एक मुस्लिम देश बनाना है निज़ाम के अंतर, निज़ाम के नीचे। और मीर उस्मान अली खां जो थे वो लगातार इस प्रयास में थे कि वो किसी तरह से इसको साउथ पाकिस्तान घोषित कर दे। इसके विरुद्ध लगातार आंदोलन हुए, आंदोलन में आर्य समाज ने वहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मराठवाड़ा में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस बहुत समय से मनाया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद में हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाया जा रहा है, जबकि ये टीआरएस जो थी, यही केसीआर जो उनके नेता थे, वो ये कह के आए थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम यहाँ पर मुक्ति दिवस मनाएंगे। आप उस मुक्ति दिवस में देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, और केसीआर और ओवैसी जो है वो अलग मना रहे हैं इंटीग्रेशन डे। काय का इंटीग्रेशन? इन रजाकारों को मार मार के भगाना पड़ा था भारत सरकार को, और वो भी उनके हाथ बंधे हुए थे, गांधी के कारण पहले और माउंट बैटन, जब जून 21 को माउंट बैटन चला गया उसके बाद ही ये संभव हो पाया कि हैदराबाद के ऊपर अधिकार किया जाए फोर्स का उपयोग करके। तो उसको अब सेलिब्रेट करना और अमित शाह को उसका नेतृत्व देना, ये भी एक बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। और तीसरी बात जो मैं देख रहा हूं, हम आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो मोदी सरकार की नीति है, जयपुर डायलॉग्स लगातार उसकी आलोचना करता रहा है, क्योंकि हम ये कहते रहे हैं कि ये जो है ये जिहाद को समर्पण की उसी नीति पर चल रहे हैं जिसने जम्मू और कश्मीर को इस स्थिति में पहुंचाया, जिसके कारण 7 एग्जाइल हुए, एक्सोडस हुए, 7-7, और जिसके कारण ये स्थिति बनी कि जम्मू कश्मीर में कि वो बिल्कुल एक प्रकार से भारत से अलग होने की स्थिति में आ गया। उसके जो खास तौर से जो कश्मीर वैली के लोग हैं वो अपने आप को अलग समझने लगे। ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो अलगाववादी शक्तियों द्वारा पूरे इंडॉक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग के कारण चल रहा था। जब इन्होंने 370 हटा दिया और बाकी और कुछ काम किए, लेकिन जमात इस्लामी को बैन किया, बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया, लेकिन जो जमात इस्लामी के मदरसे थे उनको बैन नहीं किया, जो मौलवी वहाँ पर घृणा फैला रहे थे, जो वहाँ पर खुतबे देते घूम रहे थे, तरह तरह के प्रचार कर रहे थे, उनको भी बिल्कुल टच नहीं किया। तो कल 5 ऐसे मौलवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 5 ऐसे मौलवियों को गिरफ्तार करने से ये संकेत है कि जो कश्मीर में डीएनडी आप जानते हैं ना, दोवाल एंड दुल्लत जो पॉलिसी चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी हुई है और अमित शाह की पॉलिसी उसके ऊपर प्रिवेल करी है, नहीं तो दोवल दुल्लत डॉक्ट्रिन में ये संभव ही नहीं है कि वहां के मौलाना मौलवी पकड़ लिए जाए। मौलाना साहब तो आप जानते हैं, आज तक किसी को पता ही नहीं कि जेम्स बॉन्ड साहब ने उनको कहां गायब करके कहां छिपा रखा है। साथ में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो ये है कि महाराजा हरि सिंह जो अंतिम शासक थे, जम्मू कश्मीर शासन ने यह निर्णय लिया है कि महाराजा हरि सिंह का जन्मदिवस मनाया जाएगा और उस दिन पब्लिक हॉलिडे होगा 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर होना, महाराजा हरि सिंह को ऑनर करना, यह भी एक बड़ा संकेत है। इस बड़े संकेत का भी हमें स्वागत करना चाहिए। और इससे जो है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा की जो कमजोरियां लगातार हमें दिख रही हैं और जो बहुत सारे जो एक्शन हमको लेने हैं हम नहीं ले पा रहे हैं, अभी हम 7 बजे, आप लोगों को फिर से याद दिला दें कि हम 7 बजे आज जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का, जो एक तरह से भारत में इस्लामिक लॉ के प्रचलन के जो 3 मुख्य अवयव हैं या 3 मुख्य धुरी हैं, यानी कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, इन पर हम विष्णु शंकर जैन जी से बात करेंगे। लेकिन यदि अमित शाह को फ्री कर दिया जाता है और उनको आंतरिक सुरक्षा में जो हस्तक्षेप हो रहा है जेम्स बॉन्ड इत्यादि से, उनसे मुक्त कर दिया जाता है, तो हम यह आशा कर सकते हैं कि इन स्थितियों में भी सुधार की गुंजाइश है, फिर यह कार्य हो सकेंगे। तो ये मैं एक आपको आज एक बड़ा ही आशावादी एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, जिसे मुझे लगता है कि यह है, हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। और स्वागत करके है ये भी हमें लगातार देखते रहना चाहिए कि यह आगे कितना चलेगा। पश्चिम बंगाल में भी अगर इसकी आगे कुछ परिणति हो, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास बहुत पावर है, मैं लगातार कहता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को सीबीआई के तहत तो आप काबू कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। सीबीआई और ईडी ने उनकी जान में, बिल्कुल उनकी नाक में नकेल डाल दी है, जान में उनकी आफत है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी आपको अपनाने पड़ेंगे। आपको पश्चिम बंगाल कि जो सरकार है या तेलंगाना की सरकार है या कोई भी इस तरह की जो सरकारें हैं, जो खुले रूप से केंद्र सरकार की अवहेलना करती हैं, उनको आप धारा 256 में, संविधान की धारा 256 में आप उनको डायरेक्शन दें, आपको ये अधिकार है। और वह अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने भी उस अधिकार की पुष्टि कर रखी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अधिकार है, 256 में इंस्ट्रक्शन दीजिए, 256 के इंस्ट्रक्शन की यदि अवहेलना होती है तो वो धारा 365 में, उसमें ऑटोमेटिक अजम्पशन है कि वहां पर संविधान का शासन कार्य नहीं कर रहा है। फिर उसके क्या अर्थ हैं, उसके क्या नियतार्थ हैं, वह आप सब बुद्धिमान हैं, आप समझते हैं, फिर उसके बाद फिर स्थिति कहीं भी जा सकती है। लेकिन अब ये समय आ गया है कि ऐसा किया जाए, तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि एम्पावर कर दिया गया है अमित शाह जी को, तो ये मुझे लगता है कि हम सभी के लिए अच्छी सूचना है, ऐसा मैं ये पढ़ पा रहा हूँ, और इसलिए आप लोगों से सबसे इसको मैं आज साझा कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो आकलन है वो सही हो। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, तो आज उनके जन्मदिवस के इस मौके पर उनको बहुत बहुत बधाइयां उनकी वर्षगांठ की, साथ में हैदराबाद मुक्ति दिवस की भी उनको भी बधाई, समस्त देशवासियों को भी बधाई। हैदराबाद के ऊपर हम कभी और विस्तार से कार्यक्रम करेंगे कि जो ये झूठ फैलाया जाता है कि वफादार यहाँ रह गए और रजाकार वहाँ चले गए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ये सब के सब रजाकार हैं। MIM का प्रत्येक सदस्य आज भी रदाकार है, उसकी तो केवल विवशता है कि किन्हीं कारणवश वो उस प्रकार के हथियार नहीं उठा पा रहा है, वरना उसकी पूरी ट्रेनिंग, उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन, उसका पूरा चाल चलन सब उन्हीं रजाकारों का है जिन्होंने लाखों लोगों की उस समय हत्याएं की थी। एक बार पुनः अमित शाह जी को शुभकामनाएं देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की बधाई देते हुए, भारत में चीतों के आगमन का स्वागत करते हुए हम प्रश्नों पर चलते हैं।